ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दसवां स्कंद, चौदहवां अध्याय, चौतीसवां श्लोक। तद्भूरिभाग्यम इहम जन्म, तद्भूरिभाग्यम इहम जन्म किमप्तव्याम, यद्गोकुलेपि कतमांग्रिरजोभिषेकम्। इसका अर्थ यह है कि वृंदाटवी यानी वृंदावन, ये कल का ही कनेक्शन में आ भी बढ़ा रहा हूँ आगे, जस्ट टू ब्रिंग यू ऑन द ट्रैक। वृंदावन में पशु पक्षी, कीट पतंग, जड़ वृक्ष आदि में मेरा जन्म हो जाए, और आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इसमें टीका करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी कह रहे हैं अगर ब्रज में जन्म लेने की मेरी योग्यता नहीं होगी तो ब्रज की ओर ले जाने वाले मार्ग का पत्थर बन जाऊं, जिससे ब्रज की ओर जाने वाले भक्तों के चरणों की रज से मेरा अभिषेक हो जाए। यह सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का भाव है। ब्रह्मा जी, देखो सुंदर वाक्य यहाँ पर लिखा है, ब्रह्मा जी ब्रज की रज भी नहीं बनना चाहते। उनको लगता है ब्रज की रज भी एक बहुत इम्पोर्टेंट महान वस्तु है, अगर मैं ब्रज रज बन जाऊँ तो, सॉरी लेक्चर इज इन हिंदी, आई एम वेरी सॉरी। सो ब्रह्मा जी ब्रज की रज भी नहीं बनना चाहते, कृष्ण के चरणों की रज भी नहीं बनना चाहते वो, क्योंकि कृष्ण के चरणों की रज भी एक बहुत महान चीज़ है। तो वो भक्तों की कृपा की अभिलाषा रखते हैं कि भक्तों की कृपा होगी। कैसे होगी कि मैं अगर वृंदावन में जन्म लेने के योग्य नहीं हूँ तो मुझे वृंदावन की तरफ आने वाले जो रास्ता है उसका एक पत्थर बन जाऊँ मैं, ताकि भक्त मेरे ऊपर चलेंगे तो भक्तों की चरणों की रज पड़ेगी तो अपने आप कृपा होगी। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम रतिकार मूरा, ये जो भक्तों की सेवा करने का भाव है ना, यही भक्ति लता का मूल है और यही परम सिद्धि का भी कारण है। ये शुरुआत भी है और अंत भी है और मध्य भी है। भक्तों की सेवा ये हमारे पूरे शुरू से लेकर अंत तक का भक्ति का मार्ग जो है उसका पूरा एक साई भाव है। सब बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर ऑफ पाथ ऑफ भक्ति इज टू सर्व द डिवोटीज। अगर मुझे ब्रज के बाहर भी जन्म मिल जाए तो ओके, जब तक मैं भक्तों के चरणों की रज प्राप्त करता रहूं तब तक मुझे ब्रज के बाहर भी जन्म चलेगा। तो ये हमारे ब्रह्मा जी ब्रज में प्रवेश करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए उसका सुंदर वर्णन दे रहे हैं। फिर दसवें स्कंद में 11वें अध्याय में लिखा है, वनम वृंदावनम नामम पशव्य नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृण विरुधम। महावन और नंदीश्वर के बीच वृंदावन नाम का सुंदर स्थान है जो बहुत ही फ्रेश तृण के पत्तों से भरा हुआ है। उसमें पौधे हैं, उसमें बेलियां हैं, सुंदर वन है, सुंदर फूलों से भरे हुए वन है, और पवित्र पर्वत भी है, और गोप गोपी और गौ, गोप यानी गोपाल पुरुष, गोपी यानी स्त्री, और गौ यानी गाउज, इन तीनों के आनंद के लिए इस वृंदावन में सारी सुविधाएं हैं all the facilities to please and for the happiness of Gopa, Gopi and cows. तो ये वृंदावन का प्रथम दर्शन श्री कृष्ण बलराम को हुआ. भगवान कृष्ण बलराम अपने माता पिता के साथ जन्म से लेकर 3 साल 4 महीने तक गोकुल में रहे. उनका जन्म ही गोकुल में हुआ दोनों का. और जन्म होते ही कंस ने अपना आतंक शुरू किया. वैसे तो जीव गोस्वामी और वृंदावन दास ठाकुर इनके कहने से ये समझता है कि हर रोज राक्षस आया करते थे. श्रीमद् भागवत में कुछ गिने चुने ही बड़े बड़े राक्षसों का उल्लेख किया है, क्योंकि उनके पास उतना समय नहीं था. 7 ही दिन का समय था और सब कुछ बताना था, तो उनको संक्षेप में बहुत महत्वपूर्ण बातें ही बताने में उनको समय मिला. लेकिन हर रोज राक्षस आया करते थे और हर रोज कृष्ण उनका वध करते थे. लेकिन बहुत दिनों बाद में ये जो रोज एक सभा होती थी उसका नाम है 84 खंबा, जहाँ जहाँ नंद महाराज रहे वहाँ पर एक बहुत सुंदर असेंबली हॉल, जैसे अभी कैसे GEV बनाया है तो एक असेंबली हॉल भी बनाया है. बहुत ज़रूरी, एक नहीं कई कई ज़रूरत है, छोटा बड़ा, और एयर कंडीशन भी होना चाहिए, PPT भी दिखना चाहिए, मूवी भी दिखना चाहिए, साउंड सिस्टम भी होने चाहिए. वैसे ही सभा की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि सभा गृह में सभा होती है तो लोग एकत्र आते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उनको एक मौका मिलता है. हमारे महाराष्ट्र में भी लोकमान्य तिलक ने देखा कि लोगों के बीच में संवाद नहीं हो रहा है, लोगों को एक दूसरे से मिलने का मौका नहीं मिल रहा है, प्रेरणा नहीं मिल रही है. स्वतंत्रता के लिए जो जोश होना चाहिए वो मिलने से होगा, विचारों के आदान प्रदान से होगा, तो जगह ही नहीं मिलने के लिए. तो इन्होंने गणेश उत्सव शुरू किया. हमारे शास्त्र में कहीं भी गणेश उत्सव सार्वजनिक नहीं लिखा गया है, किधर भी नहीं है. देयर इज़ नो मेंशन ऑफ सार्वजनिक पब्लिक गणेश उत्सव. ये एक सोशल एडजस्टमेंट है. गणेश उत्सव तो घर पे ही होता है, सबके बिरादरी में होता है, परिवार में होता है. लेकिन इन्होंने पब्लिक क्यों किया, सार्वजनिक क्यों किया, ताकि लोग आकर वहाँ पर आए, मिलकर काम करें, आते अब उठते बैठते योजना करते हुए एक दूसरे के साथ बात करें. और हम कितना भी काम के लिए एकत्र आएंगे फिर भी अपनी निजी बातें करते ही हैं, है ना. हाउएवर यू कम टुगेदर फॉर मीटिंग, यू सडनली से टुडे वाज पराठा वाज वेरी गुड, सडनली यू विल से आउट ऑफ कनेक्शन. सो दैट इज ह्यूमन नेचर. तो लोगों को साथ लाने का काम होना चाहिए, तब लोगों के विचार आदान प्रदान हो सकते हैं. इसलिए नंद महाराज जहाँ जहाँ भी थे, उनका मेन वास्तव्य जहाँ पे भी था, हर जगह पर एक 84 खंबा नाम का जगह हुआ करता था. इसका मतलब है ऐसा एक ऑडिटोरियम जिसमें 84 खंबा हुआ करते थे, 84 पिलर्स, जो 84 लाख योनियों के प्रतिनिधित्व करते थे. और वहाँ बैठकर क्या होता था, वहाँ बैठकर नंद बाबा, उपनंद, अभिनंद, सुनंद, नंदन चाचा और बाकी सारे बड़े बड़े गोप जितने भी थे, बुजुर्ग थे, नंद बाबा जी के मित्र थे, वो सब शाम को मिला करते थे. हर दिन उनकी एक मीटिंग होती थी एट द एंड ऑफ द डे. और क्या करते थे, उसमें एक ही बात करते थे कि आज कृष्ण ने क्या किया. तो हर रोज के चर्चा में होता था कि आज कोई राक्षस आया, उसको कृष्ण ने ऐसे मारा, बच्चों ने ऐसे बताया, उन्होंने ऐसे बताया, उन्होंने ऐसे बताया, पूरा एक रिपोर्ट लेते थे. हर ग्वाल बाल को उनके बच्चे बताते थे कि आज क्या क्या हुआ, और सभी ग्वाल बाल मिलकर नंद बाबा को भी बताते थे क्या हुआ. उधर एक सुंदर जगह है नंदगांव में, गोकुल में भी है वैसे, लेकिन नंदगांव में एक सुंदर जगह है, नंद बैठक. वो जमीन के सर पर है और नंदगांव पहाड़ पर है, मतलब नंद भवन पहाड़ पर है. तो वहाँ पर क्या होता था कि नंद बाबा और यशोदा को कृष्ण जब ही लौट के आते थे गौचारण या वत्सचारण करके, तो वो पहाड़ पर चढ़कर फिर मिलेंगे इतना उनको संयम नहीं होता था. इसलिए वो उनका स्वागत करने के लिए खुद पहाड़ उतरकर जमीन के लेवल पे आते थे, ताकि जल्दी मिले उनको. इफ़ यू वेट टिल दे क्लाइम अप देन इट इज़ स्टिल फर्दर मोर टाइम. ऑलरेडी दिन भर वो बेताब रहते थे, कभी आएंगे, कभी आएंगे, कभी आएंगे. यशोदा मैया तो यशोदा बैठक में जाकर बार बार वहाँ पर जाकर बैठती थी और चारों तरफ देखती थी, हाँ अभी उधर है, अभी उधर है. अरे ऊपर देखती थी आकाश में, सूरज ढल क्यों नहीं रहा है अब तक. दो चीजें देखती थी, एक कृष्ण बलराम गाओ गाओ का ग्वाल बाल किधर है, चारों तरफ में देखती थी वो, यहाँ पर है, उधर है, उधर है, उधर है, वत्स वन में है या तो इधर कोशी में है, या तो खदीर वन में है, या तो इस तरफ किधर है, या गोवर्धन में है, ये उनका रेंज हुआ करता था। यशोदा माई को दिखाई पड़ना चाहिए, इतने ही दूर तक उनको जाने को परमिशन था जब वो बच्चों को यानी बछड़ों को लेकर चलते थे। और दो चीज़ देखते थे, बच्चे किधर है, और आकाश में देखती थी किसको, सूर्य को, अरे अभी तक ऊपर ही सर पे है, कब नीचे आएगा, इतना स्लो क्यों चल रहा है, वाई आर यू गोइंग सो स्लोली, जल्दी ढल जाओ ताकि मेरा बालक लौट के आएगा। ये रोज का लीला है। और फिर जब ये आते थे ना तो ये सब तुरंत अभी हो गया, सूरज ढलने को आ गया, वो वापस आने लगे, मुरली सुनाई पड़ी, तो सब गोपियाँ नंद बाबा और यशोदा माई सब नीचे आते थे और एक जगह बैठते थे, और वहाँ पर सारे ग्वाल बाल भाग के आते थे और पूरे कृष्ण बलराम दोनों कूद कर उनके गोद में चढ़ते थे। आपने कभी अनुभव किया है क्या ऐसा, कूदते हैं ना कि आप कभी गिर जाते हो तुरंत, इतना स्पीड में आके जंप मारते हैं आपके गोद में, ये इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। तो जो होशियार होशियार होते हैं ना पेरेंट्स, वो सब ट्रेंड होते हैं, वो उनको पता है कैसे उसको हैंडल करना है। तो एक गोद में कृष्ण, एक गोद में बलराम, और अभी दोनों बोल रहे हैं बाबा ये हुआ वो हुआ ऐसे हुआ वैसे हुआ, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं इधर दुख रहे, और दोनों ही नहीं बोल रहे हैं, बाकी सारे भी बोल रहे हैं एक साथ में क्योंकि वो अभी तक अपने घर पे नहीं गए ना, पहले कृष्ण को विदा करेंगे फिर अपने घर पे जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कितना किल्लोड़ होता होगा, सब लोग बोल रहे हैं और सबका एंगल डिफरेंट डिफरेंट, ऐसे नहीं कि कोई रिपीटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं ऐसे हुआ वैसे हुआ, यहाँ तक हाँ माटी खाई कृष्ण ने, ऐसा किया, मैंने बोला मैंने मत खाओ फिर भी खाया, मैं समझाया उसको ये अच्छा नहीं है, मैं माँ को बोलूँगा पिताजी को बोलूँगा फिर भी खाया उसने, ये भी बोलते हैं। और ये आज ये राक्षस आया उसने हमला किया, कृष्ण ने उसको मारा, क्या आनंद आया, कृष्ण ने क्या बहादुर से मारा, प्रेम हो जय हो जय हो। ये सब किल्लोड़ को बहुत देर तक उनको सुना पड़ता था, उसके बाद में ग्वाल बाल अपने घर जाते थे और फिर वही सब न्यूज़ अपने पिताजी माताजी को सुनाते थे, और इसके बाद में इनकी मीटिंग होती थी। फिर यशोदा मैया बिजी है उधर, उनको नहलाने में खिलाने में पिलाने में कपड़े बदली करने में जो भी लोरी गाने में, और यहाँ पर बड़े सब बुजुर्ग जो ग्वाल बाल हैं वो मीटिंग कर रहे हैं। वो तो मज़े का पार्ट तो छोड़ दिया लेकिन जो गंभीर बात है वो डिस्कस करते थे, क्या हुआ कैसे हुआ। तो ये बहुत साल के बाद बहुत दिन के बाद में जब भी काफ़ी राक्षस आए एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो उनको लगा कि ये जगह अभी सुरक्षित नहीं रही, ये जगह अभी सुरक्षित नहीं रही, उनको जाना चाहिए। और जब नंद बाबा का अभिषेक हुआ था राज्याभिषेक, उसके पहले उपनंद बाबा का राज्याभिषेक हुआ था, और उपनंद बाबा जो थे वो परजन्य महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे, तो कायदे से उनका राज्याभिषेक हुआ, उनका राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक हो लिया हो गया उनका, तो उन्होंने तुरंत अपना मुकुट नंद बाबा को पहनाया और कि हमारे में से नंद जो है सर्वश्रेष्ठ है, मैं ज्येष्ठ हूँ लेकिन सर्वश्रेष्ठ नंद बाबा है। उन्होंने भी वो नम्रता से स्वीकार किया, पहले मना किया बाद में स्वीकार किया, बोला राजा का आदेश है आपको ये राजा बनने का, तो ठीक है एक मेरी कंडीशन है कि आपकी सलाह के बिना नहीं चलूँगा मैं, और जीवन भर उसको पालन किया, ऐसा नहीं कि वहाँ पर इतना भाव में थे तो बोल दिया कि आपके बिना तो मैं चलूँगा नहीं, बाद में फिर एक बार भी नहीं पूछा, ऐसे आमतौर पर होता है, अरे प्रभु जी मैं आपके अंडर ही काम करूँ, मैं आपका सेवक, मैं आपको रिपोर्ट करूँगा, उसके बाद में फिर कभी रिपोर्ट नहीं करते, फिर हम लोग कंप्लेन करते क्या हुआ रिपोर्टिंग का, अभी इतना सब हो गया फिर बताया नहीं मुझे कुछ, हाँ ठीक है फिर वो लोगों को भौतिक दुनिया में इंडिपेंडेंट काम करना अच्छा लगता है, बॉस अच्छा लगता नहीं कभी भी, दे डोंट लाइक एनीबडी टू रिपोर्ट, यू नो दे शुड डू ऑन देयर ओन, बट नंद बाबा का ऐसा नहीं था, इसलिए उनकी उनकी कहानी बार बार सुननी चाहिए क्योंकि किसी व्यक्ति को अपना स्वामी मानना और उसको रिपोर्ट करते रहना एक नम्रता का लक्षण है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स टू ग्रो, भले वो डिवोटीज हो प्रोफेशनल हो फिर भी ये नम्रता जीवन में बनाए रखनी चाहिए। तो कभी निकले वो वहाँ से, जब भी उपनंद महाराज ने सलाह दिया कि अभी ये जगह बहुत असुरक्षित हो गई है इसलिए यहाँ पर अधिक रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो नदी पार करते ही मथुरा है, नदी पार करते ही कंस का राज्य है, तुरंत वहाँ से आने में देर कितनी लगती है, एक नदी तो पार करनी है, और वैसे भी राक्षस बहुत मायावी होते हैं, वो हवा में उड़ के आते हैं, एक मंत्र बोलेंगे तो पूरा, वो पुतना कैसे मालूम है आपको, पुतना पुतना का बहुत अच्छा था, बहुत सेल्फ एयरलाइंस था उसका, खुद का एयरलाइंस पुतना एयरलाइंस, क्या करती थी वो एक घास का पत्ता लेती थी और उसको मंत्र बोलती थी, तो घास का पत्ता एयरप्लेन बनता था, वो उसका बैठती थी और बोलती थी मुझे गोकुल जाना है, तो सीधे वहाँ वो एरोप्लेन जो है ना वो गोकुल में उतरता था। कोई हेलीपैड की जरूरत नहीं, एयरपोर्ट की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं, किधर भी बैठना है किधर भी उतर सकते हैं। वो मच्छर कैसे होता है, कोई उसको कोई रनवे की जरूरत होती है क्या? एकदम स्पेसिफिकली आपके हाथ के ब्लड वेसल जो ज़्यादा फूगी हुई है उस पर जाके तुरंत बैठ जाएगा और वहाँ से खून लेके वहीं से उड़ जाएगा हेलीकॉप्टर की तरह। वैसे पुतना अपनी खुद एयरलाइंस में चलती थी और बाकी भी राक्षस ऐसे ही थे, सबको सब विद्या पता थी, रात की दिन की सब। तो उन्हें कहा अभी यहाँ पर अच्छा नहीं है, कितनी घटना हुई देखो, हमको कितना रिपोर्ट मिल रहा है रोज का रोज। तो उपनंद बाबा के कहने पर नंद बाबा ने भी आदेश निकाला, चलो सब लोग पैक करके। और अभी क्या है ना, मैं सोचता हूँ कुछ बोलूँ और वह जब बोलने लगता हूँ तो मेरे बहुत सारी चीज़ें याद आने लगती है, नई नई चीज़ें, और वो भी अच्छी चीज़ें होती है, तो मुझे बताने का मोह होता है, तो मैं बता ही देता हूँ, है ना। आगे का तो वो बता देंगे आगे कि हम भी हैं आप भी है, क्या प्रॉब्लम नहीं है कुछ। तो क्या हुआ कि अभी वो निकल गए सब लोग, जीव गोस्वामी उसका पूरा विस्तार में वर्णन करते हैं गोपाल चंपू में, इन डिटेल डिस्क्रिप्शन, शिफ्टिंग ऑफ ब्रजवासीज फ्रॉम गोकुल टू नंदगांव। तो सब लोग ने अपना सामान डाल दिया बैलगाड़ी में, सबका सामान, पूरा गांव शिफ्ट हो रहा है, ऐसा नहीं कि आप ही शिफ्ट हो रहे हो, आप शिफ्ट होंगे तो 10-15 बैग होंगे आपके, बॉक्स होंगे 10-15, पारा गांव शिफ्ट हो रहा है तो कितना सामान होगा। और द्वापर युग का सामान, द्वापर युग की ऊंचाई, द्वापर युग का कपड़े सब बड़े बड़े सब बैलगाड़ी में डाल दिया। उसके ऊपर से ऐसा नहीं कि हम लोग जिस गाड़ी में बैठ रहे हैं उसी में सामान भी है, गोद में भी सामान है, नीचे भी सामान है, ऐसा नहीं है। वो रानी और राजा है ना, नंद बाबा यशोदा माई, तो उनका जाने का वाहन अलग है, उसमें कोई सामान वाहन नहीं है, मखमल का कपड़ा डाला है उसके ऊपर, गद्दी डाली है ऊपर, कृष्ण और यशोदा बैठे हैं, दूसरे में रोहिणी बलराम बैठे हैं, तीसरे में बलराम जी सॉरी नंद बाबा और बड़े उपनंद बाबा सब उनकी पत्नियाँ, अलग 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 रॉयल पीपल अलग बैठे हुए हैं, उनका सामान पीछे से अलग से आ रहा है और पूरा आनंद लेते हुए जा रहे हैं। हाँ, चक्रवासम मतलब ऐसे सेमी सर्कुलर, ऐसा उनका यात्रा का स्टाइल था, ऐसे सेमी सर्कुलर तरफ सब भी बैलगाड़ियाँ चल रही है और बीच में लोग कुछ चल रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं, कुछ ब्राह्मण लोग उनके लिए श्लोक गा रहे हैं। देखो कितना बढ़िया सीन है, ऐसा नहीं कि गाड़ी में बैठे चले गए। हाँ, अभी हमारे जब जाता हूँ ना हिमालय में, तो वहाँ के साधु लोग हैं ना, जब हम निकलते हैं ना आश्रम से उनके, तो हमारी गाड़ी के पास आते हैं, तो खड़े होकर बोलते हैं, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वातृकम इव वंदनात् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात्। आपके सफ़र के लिए आशीर्वाद देते हैं, सब साधु लोग हैं, आश्रम के चीफ भी आके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सारे जितने भी लोग हैं उनके ब्राह्मण वृंद जो है वो राजा के आनंद के लिए श्लोक भी गा रहे हैं, उनका भी सामान किसी बैलगाड़ी में है क्योंकि वो भी शिफ्ट हो रहे हैं लेकिन अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं। तो कितना सुंदर वातावरण है, सब बैलगाड़ियाँ, उसको छकड़े कहते हैं, बहुत सुंदर सजाए हुए हैं, भरे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कितना बड़ा कारवां होगा, वो कितने लाखों लोग होंगे उसके अंदर, वो सब शिफ्ट हो रहे हैं। तो शिफ्ट होते होते ना एक एक मखमल के गद्दे बिछाए हुए छकड़े पर यशोदा और कृष्ण बैठे हुए हैं। और कृष्ण बताए ना आपने कैसे, यहाँ देख रहे हैं उधर देख रहे हैं। तो एक बुढ़िया आई गोपी, 105 साल की थी वो, और वो गोपी देख रही है कृष्ण को, कितनी भाग्यशाली यशोदा माँ, देखो उसके गोद में कृष्ण बैठे हैं, कितना बड़ा भाग्य है, कितना आनंद है इसके अंदर, कितना अच्छा होता अगर वो मेरे गोद में होते। कोई द्वेष मत्सर नहीं उनके मन में, केवल एक प्रेम का भाव निर्माण हो रहा है, ऐसा नहीं कि उसके गोद में क्यों बैठा है, मेरे गोद में क्यों नहीं है, उसका ही बेटा क्यों हुआ, मेरा बेटा क्यों नहीं हुआ, ये हमारे भौतिक दुनिया में होता है। बट वो सिंसियरली सोच रही है कि अगर मेरे गोद में होते तो कितना अच्छा होता, और एक निरपेक्ष इच्छा थी वो, उसमें कोई स्वार्थ या कोई एम्बिशन नहीं था, आकांक्षा नहीं थी कोई, एक सरल हृदय का सहज भाव था वो। ये ब्रजवासियों की बड़ी विशेषता होती है, सरलता। गुरु महाराज बताते हैं कि ब्रजवासी इतने कृष्ण को प्रिय क्यों हैं, क्योंकि वो सरल हृदय है, सिंपल हार्टेड। और सिंपल हार्टेड व्यक्तियों को बाकी सब लोग भी सिंपल हार्टेड लगते हैं, वो वैसा ही व्यवहार बाकी लोगों से भी करते, चाहे वो क्रूर कपटी भी होंगे तो भी। एंड दैट इज़ वाई कृष्णा लव्स देम, बिकॉज दे आर सिंपल हार्टेड। तो ऐसे सिंपल हार्ट से वो एक इच्छा प्रकट करती है। तो कृष्ण तो कृष्ण है ना, वो बालक हो तो क्या हुआ, छोटे से उम्र के, लेकिन कृष्ण तो कृष्ण ही, सब जानते हैं सबके मन की बात। अभी उस गोपी का जो बुढ़िया है, मुंह में दांत भी नहीं उसके, 105 साल की उसकी उम्र है, झुका हुआ शरीर है, सब वार्धक्य के सभी चिन्ह उस शरीर में हैं, और वो एक सिंपल गोपी है, वो कोई रानी किसी की, नंद बाबा के बड़े भाई की बीवी, छोटे भाई की बीवी, ऐसा कोई रॉयल फैमिली की भी नहीं है वो। तो क्या चांस है उसको उसके गोद में कृष्ण आने का? जीरो चांस, नो चांस एट ऑल कि कभी भी इस कारवा में, इस जर्नी में कृष्ण उनकी गोद में आ जाए। लेकिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना तो हमारे कृष्ण का काम है ना? तो क्या करते हैं, लीला रचाते हैं कृष्ण। फिर सभी माँ को, अपने माँ को सब प्रश्न पूछना आरंभ करते हैं। बच्चे कैसे होते हैं, मम्मी ये क्या है, मम्मी वो क्या है, सब ऐसे पूछते रहते हैं। आप उत्तर देते जाओ, नया पूछते रहेगा, एंड होगा नहीं उसका, हर चीज़ के बारे में ये क्या है वो क्या है पूछते रहेगा। कभी कभी एक ही प्रश्न दो तीन बार पूछते रहेंगे, ये क्या है, फिर बोलेंगे बाबा ये डॉगी है, बाबा मम्मी ये क्या है, डॉगी है बताए ना, डॉगी है, मम्मी ये क्या है, डॉगी है, ऐसे। लेकिन माता को बड़ा आनंद आता है, माता को कोई बोर नहीं होता है उसके अंदर। लेकिन वही माता को, माता ने बुढ़िया बुढ़ा होने के बाद में एक प्रश्न जवान लड़के को दो बार पूछा तो बोलते हैं मम्मी क्या है तुम्हारा, चुप बैठो ना, कितनी बार बोलूं। दिस इज हाउ इट इज मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है चलो, तो कृष्ण ने सब पूछना शुरू किया, ये क्या है, तो बोले तोता है, उसके बाजू में कौन है, बोले मैना है, बोलते मैना कौन लगती है, उसकी बीवी लगती है, अच्छा ये कौन है, कौवा है, और कैसे होशियार है, मालूम है, जोड़ी को देख के ही पूछ रहे हैं, अकेले बर्ड को देख के नहीं पूछ रहे हैं, बोले कौवा है, फिर वो बाजू में उसकी कौवी है, वो कौन है उसकी, वो पत्नी है, फिर ये कौन है, कोयल है, ये कौन है, ये कोयल की मतलब क्या, कोकिला, कोकिला और कोकिला, ये कौन है, उसकी पत्नी है, फिर ये कौन है, ये हिरन है, उसके बाजू में कौन है, वो हिरनी है, ये कौन है, ये गाय है, उसके बाजू में कौन है, बैल है, वो कौन लगती है, वो गाय, बैल की पत्नी लगती है वो। ऐसे ना दुनिया भर के प्राणियों का, पक्षियों का सब पूछ लिया। अभी मैया को आनंद आ रहा है, बच्चा पे थोड़ा सा नॉलेज प्राप्त कर रहा है ना, इज डेवलपिंग हिज ब्रेन एंड आस्किंग क्वेरीज अबाउट नेचर, सो हैप्पी, एकदम बहुत प्रेम से वो उत्तर दे रही है। और बहुत ढेर सारे जोड़ियों के प्रश्न उत्तर होने के बाद सब उत्तर समाधान का रख दिए, कोई ऐसा पता नहीं है, आई डोंट नो, ऐसा नहीं बोला, सबके बारे में उत्तर दिया। और अचानक हमारे कृष्ण भगवान बहुत जोर से रोने लगे, वेरी लाउडली, मतलब हमारे मराठी में क्या बोलते हैं, भोंगा पसरला, मतलब ऐसा भोंगा पसरला, मतलब ऐसा रोने लगे कि सब रुक गए। अभी कैसा है ना, कृष्ण भगवान अगर खुश है सब लोग अपने अपने काम में रहते हैं, और कृष्ण भगवान अगर रोने लगे ना तो सबको काम छोड़ के यशोदा के घर पे आ जाते हैं, क्यों रो रहा है बाबा, क्यों रो रहा है, कुछ करो कुछ करो, हम कुछ करें क्या, किसी को बुलाएं क्या, क्या हुआ बताओ, बीमार है क्या, खाना चाहिएगा, मक्खन चाहिएगा, बताओ क्या चाहिए, रोना नहीं चाहिए वो। अभी सब कुछ पेट पेट भरा के, स्तनपान करा के, मक्खन खिला के, आराम से चल रहे हैं, तो अचानक रोने का कारण क्या है, सब कारोबार रुक गया, ब्राह्मण लोग श्लोक बोलना रुक गए, सब रुक गए, और सब लोग उसी छकड़े के पास आ गए जहाँ पर वो बैठे हुए हैं, बहुत देर तक रोए। कभी कभी क्या होता है ना, बालक जब रोता है ना तो आप बोले क्यों रो रहे बेटा, क्यों रो रहे हो, तो ऐसे ही करते रहते, उसको बोलने के लिए नहीं होता, यू नो ही इज क्राइंग सो मच क्राइंग दैट ही कैन नॉट इवन स्पीक, थोड़ा ठंडा होना पड़ता है, थोड़ा जल वल पी के थोड़ा सा ठंडा हो गया, फिर वो सिसकियाँ उसकी जो है ना वो कम हो जाती, तो वो भी हो गया। उसके बाद में बोला, क्या बोला होगा आपको पता है, क्यों रो रहे वो, नहीं क्या बूढ़ी माँ का कनेक्शन है उसमें, वो बोले इसकी पत्नी क्या, उसकी पत्नी, ये प्रश्न पूछे उन्होंने, वो बोलते हैं सबकी पत्नी है, मेरी पत्नी नहीं है, एवरीबडी हैज अ वाइफ, आई डोंट हैव वाइफ। अरे इतनी सी बात पे रो रहे हो, अरे तुम छोटे हो अभी, तुम बालक हो, अभी जब उपवधु हो जाओगे, मतलब जवान हो जाओगे, तो बहुत सुंदर सी बहू आपको देखेंगे, विवाह करेंगे, अभी तो छोटे हो आप, मुझे नहीं पता मैं छोटा हूँ कि बड़ा, मुझे अब भी बीवी चाहिए, अभी क्या करेंगे, वॉट टू डू, मान ही रहे, सब गोपियाँ समझा रही है एक एक करके आके, अरे बेटा तुम छोटे हो, बालक हो, अभी तुम्हारे लिए हमने देखेंगे सब, अपना सब अच्छी बहुत सुंदर बहू देखेंगे आपके लिए, सबकी जैसी बहू है तुम्हारी भी बहू होगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए, मतलब मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे आप भी कभी बीवी चाहिए, अभी बड़ा प्रॉब्लम हो गया ना, अभी क्या करेंगे। तो सभी गोपियों ने थोड़ा मंत्रणा किया गुप्त में, सोचा कि एक काम करेंगे, सभी जितनी गोपियाँ यहाँ पर है ना वो सबको ग्रुप बना देंगे, भैया इसके योग्य मतलब तीन साल चार महीने के थे ना उस समय पे जब शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसकी छोटी वाली गोपियों को एक ग्रुप बनाया, थोड़ी इक्वल एज की ग्रुप बनाया, उससे बड़े हुए, उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े, फिर जवान, फिर शादीशुदा, फिर मध्यम वयीन, फिर सब करके बड़े बूढ़ों का भी बनाया, क्योंकि इसका भरोसा नहीं ना, क्या करेगा ये. यू शुड बी ऑलवेज रेडी ओवर प्रिपेयर्ड फॉर कृष्णा. तो सब कुछ हो गया, सब. फिर बोला देखो ऐसा है, कोई बात नहीं, अब भी आपको बीवी दिलाते हैं. आपके सामने एक गोपी आएगी, आपको आप देखो पसंद करो, अभी कभी विवाह कर देंगे ऑन द स्पॉट, ऑन द रोड. सब ब्राह्मण सब रेडी है इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सामान भी सब गाड़ी में रखा हुआ है, कभी भी खोल के कर सकते हैं. अभी आप, मैं इतना लंबा वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन ना पहले उसके ऊपर उम्र के हिसाब से सब गोपियाँ आई, छोटी छोटी गोपियाँ आई, कुछ ऐसे माँ के गोद में थी. सब तो दिखा रहे हैं उसको. बहुत सारी गोपियाँ अपने माँ के गोद में थी, वो एक एक करके ले आ रहे हैं, तो एक एक करके रिजेक्ट कर रहे हैं सबको. तो अपनी उम्र वाले खत्म हो गए, फिर समवयस्क भी समाप्त हो गए. अभी क्या करेंगे, बोला अभी थे बड़ी, बड़ों को लेके आओ, क्या मालूम इसको क्या पता है, मन में क्या भरा है इसके. सब बड़ों को लेके आए, फिर 7-8 साल की या 9 साल की, 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की, फिर विवाहित चालू हो गए. हाँ 20 साल के तो विवाहित होते हैं उस समय, विवाहित चालू हो गए, बच्चे वाले चालू हो गए. सोचो आपको बच्चे भी है, अरे सब लोग अपना सज धज के आ रहे हैं, मतलब जितना हो सके उतना मुमकिन है उतना सज धज के आ रहे हैं. एक एक खड़े हो रहे हैं, सबको बात कर रहे हैं, हूँ करके सबको, सबको क्विकली बात कर रहे हैं. फिर मिडिल एजेड, फिर जिनको बच्चे हैं, फिर जिनको पोते भी हैं, ये सब चालू हो गए. और उनको सबको मना कर दिया. और लास्ट में जिनके मुंह में दांत नहीं है वो भी चालू हो गए, उसको भी रिजेक्ट. तो अभी क्या करें, सब लेडीज समाप्त होने लगे. अभी इसका अभी रोना बंद नहीं होगा तो चलेंगे कैसे आगे, आगे पहुंचेंगे कैसे. लास्ट में वो 105 साल की जो बुढ़िया थी वो अकेली बची. अभी क्या करेंगे, उसको बुढ़िया को आगे किया उसकी. तो ये मेरी बीवी है, ऐसा करके झाट करके जंप मारी उसके गोद में, सीधे जंप मारी उसके गोद में. सब लोग हंसे, वो गोपी भी हंस रही है, उसके मुंह में कोई दांत नहीं है. तो सब बोले, कोई गोपी बोली, ब्रज भाषा में बोली, कि बहुत जोर की जोड़ी है, या के मुंह में दांत ना है, वाओ के मुंह में भी दांत ना है. एकदम परफेक्ट मैचिंग है. बोलते इसके भी मुंह में दांत नहीं है, उसके भी दांत नहीं है, ऐसे बोले. और फिर अभी उसका, उसके गोद में बैठ गए वो, उसको एक छकड़ा दिया गया, अलग बैलगाड़ी दी गई. और वहां से छठीकरा से लेकर पूरी नंदगांव तक की यात्रा वो बुढ़िया के गोद में बैठ के की उन्होंने. देखो इच्छा प्रामाणिक होनी चाहिए, कभी भी उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, और वो कृष्ण के आनंद के लिए होनी चाहिए. पर कृष्ण ऐसा हमारे भाषा में बोलते हैं ना, ऐसा जुगाड़ करेंगे ना, जिसको हम लीला कहते हैं, ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आपको आश्चर्य होगा कि नामुमकिन चीज मुमकिन हो गई. जैसे अभी जयद्रथ की मृत्यु करने वाली है, होने वाली है, होने होना चाहिए, और सूर्यास्त जो है वो होने ही तैयार नहीं है, और तो लगता है कि सूर्यास्त हो जाएगा अभी, लेकिन वो तो बहुत दूर है. अभी अर्जुन की मृत्यु निश्चित है, निश्चित मतलब 100% निश्चित. इतने इतना कहते हैं, पता नहीं कौन से समुद्र में रखा था उसको, लेकिन लिखा है कि उसको समुद्र में खड़ा किया था एकदम लास्ट में. और सारे कुरुवंश के जितने योद्धा थे ना, वो सारे बीच में खड़े थे आज. बाकी किसको और कुछ करना नहीं, ना युधिष्ठिर के साथ लड़ना है, ना भीम के साथ लड़ना है, सबको इधर ही खड़ा कर दे लाइन से, क्योंकि युद्ध आज समाप्त हो सकता है. अगर अर्जुन गया अग्नि में, जो हमारी जीत आज क्या हो सकती है, तो फुल कॉन्सेंट्रेशन उधर ही है. तो अर्जुन ने भगवान को बोला, भगवान ये सूरज तो बहुत फास्ट जा रहे हैं आज. तो बोले फिर लड़ते रहो इनसे, द्रोणाचार्य से, इनसे उनसे, छोड़ो उनको, आगे चलो भागो. लेकिन बोलते अभी मैं बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हो रहे. तो भगवान ने अपना चक्र चलाया और सूरज को ही ढक दिया. बोले हो गया सूर्यास्त. जोर से हा 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 करके हंसने लगे. जो दूर था समुद्र में वो इतना खुश हो गया, अरे बच गया मैं. बोला आज का तो मेरा मृत्यु का दिन था, आज तो मेरे मृत्यु का नहीं अर्जुन का मृत्यु का दिन तय हो गया अभी. तो वो ना समुद्र से बाहर आया, एकदम अर्जुन के सामने आया. तब तक भगवान ऐसे देख रहे हैं, ऐसे परेशान होकर देख रहे हैं अर्जुन की ओर. थोड़ा सा आने दिया उसको अच्छी तरह से, वो सामने आया, चक्र हटा दिया, बोला मार उसको अभी. ये सूर्य और ये जयद्रथ, कोई सूर्यास्त हुआ नहीं था. तो बेचारा बोला क्यों आया मैं, आगे दूर था वो अच्छा था, लेकिन मर गया फिर वो. और भगवान ने और एक चीज बताया, मैंने बताया कि जब उसको मारोगे ना, मतलब ये अभी चक्र को हटाने के पहले की बात है, बताया उनको जब मारोगे ना तो इसका शीश जो है वो जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि जमीन पर गिरेगा तो इसको वरदान है कि जिसके बाण से इसका शीश जमीन पर गिरेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा. तो अभी क्या करूं फिर. बोलते उसके पिताजी कोई तप तप करने बैठे जंगल में, ऐसा बाण चलाना मंत्र बोल के कि सर भी कटेगा और जाके उसके पिताजी की गोद में गिरेगा, और पिताजी ने वरदान दिया उसको उल्टा। तो भगवान ने ऐसा इंतजाम किया कि अर्जुन ने ऐसा बाण मारा, उसका शीश कटा और जंगल में कहीं तप करते हुए पिताजी के गोद में बैठा, वो भी जल कर भस्म हो गए, और वो भी ख़त्म और ये भी ख़त्म। इसका मतलब क्या, इम्पॉसिबल थिंग था वो, नॉट पॉसिबल एट ऑल। लेकिन प्रति जाने ही कौन्तेया नमे भक्त्या प्रणश्यति, डोंट वरी, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होने दूंगा मैं, जो मेरे शरणागत हो गया है मैं कभी भी उसका नाश नहीं होने दूंगा। उसी प्रकार से जो प्रेम करता है उसकी प्रेम की रक्षा भी भगवान करते हैं, प्रेम की इच्छा की पूर्ण भी पूर्ति भी करते हैं भगवान। तो ये लीला छठी करा में हुई है। ये सब मेरे मन में कैसे आया, क्योंकि ये छठी करा जो है ना, ये वृंदावन की शुरुआत है। ऐसे कहते हैं कि धाम की उत्पत्ति लीला से होती है, तो छठी करा धाम कैसे पैदा हो गया, क्योंकि वहां षष्ठी देवी का मंदिर है। भाई उसकी भी एक कहानी है बताता हूं आपको। भगवान का जब जन्म हुआ ना, तो अनेक प्रकार की कथाएं हैं भगवान की जन्म की, जन्मोत्सव की। सामान्य कथा क्या है, भगवान का जन्म हुआ, नेक्स्ट डे नंदोत्सव, अष्टमी को जन्म हुआ, नवमी को सुबह पता चला, नवमी को उत्सव, और नवमी को शाम को उत्सव का समाप्त होता है। लेकिन एक वर्णन ऐसा भी आता है कि नंदगांव का नंदोत्सव का उत्सव 6 महीने चला, और उस 6 महीने के उत्सव में नंदगांव गोकुलवासी, सॉरी नंदगोकुल नहीं, नंदगांववासी नहीं, गोकुलवासी इतने इतने भाव विभोर थे, सो मच इन एक्सटेसी कि किसी को समझ में नहीं आया कि सूर्यास्त हुआ सूर्योदय हुआ, सूर्योदय हुआ सूर्यास्त हुआ, दिन हुआ रात हुई। सब लोग इतने आनंद में लगे हुए थे कि इनको दिन रात का पता ही नहीं चला। ऐसा बहुत मुश्किल होता है समझना, यू अंडरस्टैंड ना, रात हो गई, दिन हो गया, बीच रात हो गई। लेकिन भाव विभोरता अगर ऐसी होगी ना, तो काल का भी भाई और अंतर ज्ञान समाप्त हो जाता है। एक्सटर्नल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम एंड इंटरनल कॉग्निजेंस ऑफ टाइम, क्या जो नींद आ रही है मतलब रात हो गई होगी, अंदर से समझते ना आप, बाहर से कैसे दिखता रहे तो अंधेरा हो गया। दोनों तरफ का जो नॉलेज था, ज्ञान था, कॉग्निजेंस समाप्त हो गया था, और 180 सूर्योदय और 180 सूर्यास्त और मध्यान्ह और रात्रि उनको पता ही नहीं चला। बस केवल गीत गा रहे, मक्खन उड़ा रहे, लड्डू खा रहे, दान दे रहे, ब्राह्मण आ रहे, सब लोग बोल रहे, आशीर्वाद दे रहे, देवता आ रहे, ऐसा करके 179 देश दिन समाप्त हो गए, और 180वें दिन इनको पता चला कि सूर्यास्त हो रहा है। मतलब फर्स्ट टाइम आफ्टर 179 डेज एट 180th डे इन द इवनिंग टाइम दे रियलाइज्ड कि सन इज सेटिंग, और वो सारे ब्रजवासी लोग ब्रह्मा जी को गाली दे रहे हैं, हे विदाता कितना मूर्ख है, शायद सठिया गया है। सठिया गया मतलब क्या, 60 साल का उम्र का हो गया है। सठिया गया मतलब क्या होता है, 60 साल का उम्र का आदमी को कुछ याद नहीं रहती है, कुछ समझता नहीं है, भूल जाता है, इधर उधर कुछ गलती कर बैठता है, कुछ एक गोली के बदले में 2 गोली खा लेता है, या 2 गोली के बदले में कुछ खाता ही नहीं है, या और ही कोई गोली खा लेता है जिसके बदले में, हाँ सेब खाने के बदले में केला खा लेता है। तो हम बोलते हैं सठिया गया है, मतलब बुढ़ा हो गया, अभी इसको समझ में नहीं आ रहा है कुछ। हमारी भाषा में कोंकणी बोलते हैं मुदी भ्रांति, मतलब उसकी बुद्धि जो है वो भ्रांत हो गई है। तो ब्रह्मा जी को गाली दे रहे, सोचो आप, सठिया गया है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है उसको। अरे आज कृष्ण का जन्म हुआ है, कम से कम आज सूरज को देर से सेट करना चाहिए ना। उनको पता नहीं कि 179 संचर ऑलरेडी हो चुके हैं, फिर भी उनका उत्सव समाप्त नहीं हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी अपशब्द उच्चारण करते करते वो दिन समाप्त हो गया। तो इसमें गड़बड़ क्या हुआ पता है आपको, किसी के भी जन्म के 6वें दिन षष्ठी देवी का पूजन होता है। तो ये सब एक्सटेसी के अंदर ना, छठी कभी गई समझा ही नहीं, छठी तो गई, उसके बाद में 172 दिन और भी गए, हाँ 6 days गॉन, उसके ऊपर कई महीने बीत गए, तो किसी को याद नहीं। तो फिर क्या हुआ, 6 महीने के बाद में फिर और 5-6 महीने गुजरने का समय आया, तो कृष्ण का फर्स्ट बर्थडे आया। हाँ कृष्ण का फर्स्ट बर्थडे आया ना, तो गांव में ऐसा नियम होता है कि षष्ठी पूजन किए बिना प्रथम वर्ष जन्म उत्सव नहीं कर सकते, यू कैन नॉट सेलिब्रेट फर्स्ट बर्थडे। तो कहते हैं कि पहले बर्थडे कृष्ण के आने के 2 दिन पहले जो अष्टमी थी ना जन्मत की, तो षष्ठी जो आई ना, वो षष्ठी में जल्दी जल्दी में यशोदा माई ने छठीकराई स्थान पर छठी पूजन किया। तब उसका नाम छठीकरा नहीं था, वहाँ पर षष्ठी देवी का मंदिर था जो गोकुल से कुछ देर है, दूर है। तो वहाँ पर लाकर जल्दी जल्दी में नो बहुत इमरजेंसी में उन्होंने भगवान के षष्ठी पूजन किया, और ये षष्ठी पूजन की लीला हुई तब ये छठीकरा धाम प्रकट हो गया। छठीकरा धाम नहीं था पहले, लीला हुई तो प्रकट हो गया। गोविंद कुंड की लीला हुई तब गोविंद धाम प्रकट हो गया। गोविंद कुंड है ना, भगवान का अभिषेक की लीला पहले हुई फिर गोविंद कुंड धाम प्रकट हो गया। इसलिए कहते हैं कि लीला के ही माध्यम से धाम प्रकट होता है। लीला बहुत पावरफुल है, नाम रूप लीला धाम के अंदर नाम और लीला बहुत पावरफुल है। नाम रूप लीला और धाम, इन चार भगवान के अभिन्न रूप जो हैं, इनमें सबसे पावरफुल है लीला और नाम। और नाम और लीला में क्या अंतर है? नाम जप में हमें भगवान को बुलाकर हृदय में बैठाने का प्रयास करते हैं हम लोग। वी आर स्ट्रगलिंग ऑन आवर ओन टू ट्राई टू फिक्स अवर लॉर्ड इन अवर हार्ट थ्रू द होली नेम। और क्या होता है जप करते समय, कोई बोल सकता है? जप करते समय क्या होता है? प्रयास तो कर रहे हैं, बीच में क्या होता है? कोई नहीं बोल रहा है, नोबडी इज टेलिंग, जो रोज होता है फिर भी नहीं बोल रहे हैं आप, नींद आती है ना। तो इसलिए नाम पावरफुल है, लेकिन नाम के माध्यम से भगवान की प्राप्ति इस्टेब्लिशमेंट बहुत जल्दी नहीं होता है। और लीला का एकदम उल्टा है, जब लीला वर्णन होता है ना तो भगवान स्वयं आ जाते हैं। श्रृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनाद हृदयंतस्तो अभद्राणी। अभी भगवान हृदय के अंदर जो अभद्र है उसको नष्ट करते ऐसे बताया है, लेकिन कैसे करेंगे वो? हृदय में आने के बाद ही देखेंगे और करेंगे ना, है कि नहीं? इज इट नॉट ट्रू? हृदय के अंदर जो अभद्र है, गंदगी है, उसको साफ कब करेंगे? जब हृदय में आएंगे तो देखेंगे फिर करेंगे ना। विदुनोति सुरुज सताम, विदुनोति का कोई व्याख्या ऐसा करते, एक है धुनोति धुना और एक है विदुनोति बहुत अच्छी तरह धुना। तो भगवान कथा जब होती है तो भगवान स्वयं आपके हृदय में अपने आप आकर बैठते हैं। और अगर बैठे ही हैं तो जब ये बैठना ही है क्योंकि कथा चल रही है तो साफ सफाई कर देता हूँ तो साफ सफाई भी कर देते हैं। इसलिए दोनों एक ही शक्तिशाली है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो है कथा हमारे लिए प्रैक्टिकली जल्दी स्वच्छता करती है। इसलिए कथा के माध्यम से स्थान निर्माण होते हैं, लीला धाम लीला के माध्यम से धाम निर्माण होता है। तो अभी छठीकरा में उन्होंने हॉल्ट लिया है, और छठीकरा में कहते हैं कि कुछ साल रहे वो, कुछ लोग अभी रिसर्च चल रहा है हमारा थोड़ा, कहते हैं 1-1.5 साल वहाँ पर रहे वो। और कैसे आए वहाँ पर? देखा बहुत सुंदर जगह है तो वृषभानु महाराज भी निकले हुए वहाँ से, राजा रानी को लेकर, कीर्ति मैया को लेकर, सामान को लेकर, ब्रजवासियों को लेकर, पूरा रावल धाम शिफ्ट हो रहा है और दोनों पैरेलल चल रहे हैं। तो इस जगह रुकने का निर्णय लिया, दोनों पार्टी रुक गई। आज के तारीख में छठीकरा और राधा कुंड ये दोनों 28 किलोमीटर दूर है आज के तारीख में, तभी पता नहीं कितना था लेकिन दूर है, दूर था उस समय भी। तो शास्त्र में वर्णन क्या है कि नंद बाबा छठीकरा में कैंप लगाए, अपना टेंट लगाया। वृषभानु महाराज ने अपना टेंट राधा कुंड पे लगाया, एक गांव है उधर बसोती जो वहाँ से 1 ही किलोमीटर दूर है, मतलब 27 किलोमीटर यहाँ से दूर होगा जहाँ पर इन्होंने लगाया है। लेकिन वर्णन क्या किया है ध्यान से सुनिए कि दोनों के तंबू जो थे वो एक दूसरे के सटके लगे हुए थे, टचिंग ईच अदर। इसका अर्थ क्या होता है बताइए? कितना बड़ा तंबू रहेगा वो, इनकी पार्टी उनकी पार्टी, सटके लगे हुए बोलते, बाजू बाजू में चिपक के थे बोलते। लेकिन एक का वर्णन है छठीकरा में, दूसरे का वर्णन है बसोती गांव में। और कैसे? अर्धचंद्राकृति सरे शकट जो है ना, ऐसे बॉर्डर में खड़े थे उनके, बीच में उनका तंबू लगा था, चलते भी ऐसे ही थे और खड़े भी ऐसे ही हो गए, बीच में सब लोगों ने तंबू लगा कर रुक गए वो। और वहाँ से जब निकले हैं तो कृष्ण बलराम ने, ये श्लोक का वर्णन कर रहा हूँ ना, तब कृष्ण बलराम ने सबसे पहले वृंदावन का दर्शन किया। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानी च विक्ष्यासीद उत्तमा प्रीति राम माधवोर माधवयोर नृपः। इस तरह से ये वृंदावन का प्रथम दर्शन किया और इसमें ऐसा बताया गया है कि इसमें वृंदावन के अंदर क्या नहीं है, हर प्रकार की समृद्धि वृंदावन में है। जीवन आवश्यक है, जीवन को चलाने के लिए जल है जरूरी है, जलाशय जरूरी है, जल प्रवाह जरूरी है, और गिरी कंदर जरूरी है, जड़ी बूटियां जरूरी है, फूल जरूरी है, क्या नहीं, बैठने की जगह जरूरी है, मैदान जरूरी है, उपवन जरूरी है, बगीचा जरूरी है, हरी हरी घास चाहिए गायों के लिए। तो नंद बाबा रूपनंद बाबा बता रहे हैं कि ये जो वृंदावन धाम है इसमें सब कुछ है, और सुखदेव जी बता रहे हैं कि ये वृंदावन धाम इतना सुंदर है कि इसको देखकर कृष्ण बलराम के हृदय में उत्तम प्रीति का निर्माण हुआ। फिर वृंदावन के वर्णन में कहा जाता है, उसके आगे फिर वो सफर करते 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 कुछ समय के बाद में चटिग्राम में भी कहते हैं कि चौरासे खंबा था, लेकिन सब लुप्त हो गया है, अभी बहुत जगह पे लुप्त हो गया है। वहाँ से फिर निकले हुए हैं, और चटिग्रा बहुत सुंदर जगह है बाय द वे। चटिग्रा में गरुड़ गोविंद का मंदिर है, वो ब्रजवासियों का बड़ा प्रिय मंदिर है। देखो कुछ ब्रज ब्रज कैसा है ना, ब्रज में कुछ स्थान ऐसे हैं जो टूरिस्ट के लिए बहुत प्रिय हैं, जैसे बांके बिहारी है, इस्कॉन का मंदिर है, राधा रमन का मंदिर है, बंसीवट है, ऐसे बहुत सारे फेमस जगह है, राधा वल्लभ जी का मंदिर है, और उधर कात्यायनी का पीठ है, ये फेमस जगह है, गोविंद जी का मंदिर है। तो कुछ स्थान यात्रियों के लिए बहुत फेमस है और कुछ स्थान जो है ब्रजवासियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे बिहारी जी, ये ब्रजवासियों का भी श्रद्धा स्थान है, गिरिराज जी गोवर्धन ये ब्रजवासियों के लिए बहुत प्रिय स्थान है, बरसाना नंदगांव, काम्यवन, काम्यवन तो ब्रजवासी लोग बहुत मानते हैं क्योंकि काम्यवन का जो एकांत आनंद है ना वो आज भी इंटैक्ट है। वृंदावन का भी आनंद था एक समय पे, अभी तो भीड़ भाड़ इतनी हो गई तो वो भाग जाते हैं वहाँ से, वैसे ही ब्रजवासियों का, गोस्वामियों का जो मंदिर के अधिकारी हैं, मंदिर के गुरु हैं, एक एक मंदिर के गुरु गोस्वामी जी, वो सब लोग छठिकरा जाते हैं गरुड़ गोविंद को दर्शन करने के लिए। आप कभी भी ब्रजवासियों को पूछे महाराज जी बताइए कौन सा स्थान जाए, एक ही दिन का समय है, तो आपको बोलेंगे जाओ गरुड़ गोविंद जाओ, वहाँ पर आपको जब दर्शन करने जाएंगे तो बड़े बुजुर्ग ब्रजवासी वहाँ पर दर्शन करने आते हुए मिलेंगे आपको, क्योंकि ये जो मंदिर है ये बड़ा प्राचीन मंदिर है, और हमारे कृष्ण के जो प्रपौत्र थे ना बज्रनाभ, जिनको परीक्षित ने राजा बनने पर ब्रज का राजा बनाया था, उपराजा, हाँ ऐसे बहुत राज्य हुआ करते ना, एक एक की जिम्मेदारी को देते थे इम्पोर्टेंट व्यक्ति को, तो जब परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट बन गए विश्व के, तो उन्होंने कृष्ण के प्रपौत्र यानी कृष्ण के रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पत्नी के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध उषा के पुत्र कौन, वज्रनाभ, भगवान के बड़े भक्त थे वो, परम भक्त थे और प्रपौत्र भी थे, तो वो उनको भगवान ने भी नियुक्त तो किया था बताकर, और परीक्षित महाराज ने भगवान की इच्छा के अनुसार उनको राजा बनाया ब्रज का, और भगवान ने उनको आदेश दिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वृंदावन को समझने के लिए। वृंदावन इसके अनेक अर्थ हैं, एक अर्थ है पूरी ब्रज भूमि को भी वृंदावन कहते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, इसका मतलब वृंदावन जो छोटा शहर है वो भी हो सकता है, या एक वृंदावन की पौराणिक व्याख्या है जो 20 कोस का वृंदावन है, पंचम योजनम एकम देहम एकम स्वरूपम, मेरा वृंदावन देह है ऐसा कृष्ण भगवान ने रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ में लिखा है कृष्ण के वाक्य में, पंचम योजनम एकम देहम में एक रूपम। तो वो 20 कोस का जो वृंदावन है उसके अंदर आज का वृंदावन है, उसके आगे 28 किलोमीटर के आगे जो गोवर्धन है वो भी उसके अंदर है, जो 45-50 किलोमीटर आगे नंदगांव बरसाना वो भी है, उसके आगे 10 किलोमीटर जो जावट और कोकिला वन है वो भी वृंदावन में आता है। तो वृंदावन की व्याख्या नंद उपनंद बाबा ने कैसे की है कि जो महावन यानी गोकुल और नंदीश्वर के बीच में है वो वृंदावन है, ऐसे वर्णन किया। इसका मतलब नंदीश्वर जो है नंदगांव वो भी इंक्लूड है, और ब्रह्मागिरी बरसाने का वो भी इंक्लूड है, क्योंकि वो रास्ते में आता है, नंदीश्वर के पहले बरसाना आता है फिर नंदीश्वर बाद में आता है, और उसके आगे उसी सर्कल में कोकिलावन और जावट है, तो ये भी है। यानी ज्योग्राफी का जो ना 281121 पिन कोड वो आज का लोकल सिटी है वृंदावन का, और वृंदावन जो है व्याख्या के अनुसार उसमें सब कुछ इंक्लूड है। और एक वृंदावन जो है वो 168 स्क्वायर माइल्स है, 84 क्रोशर्स, जिसको वृंदावन धाम मथुरा मंडल भी कह सकते हैं हम। तो ये सब मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि बज्रनाभ को भगवान ने बुलाया अपने अंतर्धान होने के पहले और बताया कि मैं बहुत जल्द मेरी लीला को समाप्त करके अंतर्धान होने वाला हूँ। तो वृंदावन में जहाँ पर भी मैंने लीलाएँ की है उसका आप क्या उसको जीर्णोद्धार नहीं कह सकते, भगवान का धाम जीर्ण नहीं होता है कभी, लेकिन सवारो उसको, सवारना ये बहुत बढ़िया शब्द है। कान्हा की नगरी को सजाओ, मेरी नगरी को सजा दो, कैसे, तीन तरह से सजाओ। तो जो भगवान कृष्ण ने लीला की थी उस समय गोविंद कुंड निर्माण हुआ था, राधा कुंड श्याम कुंड निर्माण हुआ था, वो कौन सा कुंड है, वो बिमल सरोवर का निर्माण हुआ था, और रामेश्वर और वो जो वहाँ पर समुद्र का निर्माण हुआ था, हिंदी महासागर महापुल बना था ना वो, राम सेतु, वो भी सब निर्माण हुआ था। लेकिन बहुत सारे कुंड जो है वो उसके बाद में बज्रनाभ ने बनाए हैं। इसका कारण क्या है, भगवान ने उनको आदेश दिया था कि तीन लेवल पर मेरे धाम को आप संवारो। एक है वन, मेरे जो वन है जहाँ पर मैंने लीला की उसको संवारो। दूसरे है सर, जो सर है उनको संवारो और जहाँ नहीं है वहाँ बना दो। और तीसरा है विग्रह, जहाँ जहाँ मैंने लीला की है वहाँ वहाँ विग्रह स्थापन करो। तो भगवान के जाने के बाद में मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपीनाथ जी, इनके विग्रह निर्माण हुए। राधा रमन का विग्रह भी 500 साल पहले निर्माण हुआ है ना, गोपाल भट्ट गोस्वामी के आने के बाद। गोपीनाथ जी भी मधु पंडित के उन्हें आने के बाद निर्माण हुए, 500 साल के पहले की बात है। लेकिन मूल गोपीनाथ जी वज्रनाभ ने बनाए। ये सब मैं क्यों बताया आपको, क्योंकि गरुड़ गोविंद की मूर्ति भी वज्रनाभ ने बनाई। ब्रज के लेफ्ट दक्षिण दिशा में एक स्थान है जिसका नाम है बल दाऊ जी, दाऊ जी कहते हैं उसको, या तो बलदेव कहते हैं, जो गोकुल से भी 25 किलोमीटर आगे है, यानी वृंदावन से आज के तारीख में 37 किलोमीटर है वो दूर, सवा डेढ़ घंटा लगता है, डेढ़ घंटे और ज़्यादा लगता है, रास्ता ख़राब होगा 2 घंटे भी लग सकते हैं। वो ब्रज की दक्षिण सीमा है, वहाँ पर 6 फुट 6 इंच की बलराम जी की काली मूर्ति है, वो भी वज्रनाभ ने बनाई थी। राधा रानी का जो विग्रह है लाडली लाल, वो वज्रनाभ ने बनाया है। ऊंचे गाँव में जो ललिता के गाँव में जो बलराम जी और रेवती की मूर्ति है, वो भी बलराम जी ने, वो भी वज्रनाभ ने बनाई है। नंदगांव में जो मूल विग्रह है, नंद बाबा, यशोदा और कृष्ण, बलराम जी की मूर्ति बाद में आई है। चैतन्य महाप्रभु के आने तक वहाँ पर 3 ही विग्रह थे, बेबी कृष्णा, यशोदा एंड नंद महाराज। आप पढ़िए चैतन्य चरितामृत, उसके बाद में बलराम जी, राधा रानी, मनसुखा धनसुखा बाद में आए हैं सब। इस तरह से प्राचीन प्राचीन जितनी मूर्तियाँ हैं ना, सब वज्रनाभ ने स्थापन की है। और वज्रनाभ ने फिर शांडिल्य मुनि से एक भागवत सुना है, उसको ब्रज भागवत कहते हैं। और बहुत सारी वो है ना पंचलाइन स्टोरीज जो हमारे सुखदेव जी के भागवत में नहीं है, वो उसमें बताई गई है सब, उसको कहते हैं ब्रजवासी पंचेस, वो सब उसमें है। और उनका समाधि जो है बज्रनाभ का, वो करेला गांव में है, चंपकलता के गांव में उनकी समाधि है। वो कहते हैं बहुत सुंदर थे वो, बहुत वीर भी थे और बहुत भावुक भक्त भी थे भगवान के। तो आज की तारीख में हमको जो भी ब्रज दिखता है उसके लिए हम बहुत लोगों की ऋणी हैं। एक है बज्रनाभ जी नंबर वन, उसके बाद है 6 गोस्वामी, वल्लभाचार्य जी, स्वामी हरिदास, हित हरिवंश जी गोस्वामी महाराज और हमारे 6 गोस्वामी, इनके हम बहुत ऋणी हैं। क्योंकि आपको इन सबके प्रयास से अलग अलग टाइम पर ब्रज लुप्त होते गए, वृंदावन धाम लुप्त होता गया, फिर दोबारा संवारा गया, फिर दोबारा बनाया गया, फिर लुप्त होता गया, फिर बनाया गया, फिर ठाकुर भक्ति विनोद, अभी अभी के आचार्यों ने भी बहुत सारा संवारा है। और अभी अभी राधा रानी के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, अभी मेरे सामने 25 साल पहले, तो वे आपको वो दिखाई पड़ रहे क्योंकि किसी ने मेहनत की है उसके ऊपर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रज का संवारना और ब्रज का होना ये भगवान की इच्छा पर डिपेंड है। क्योंकि भगवान अपनी इच्छा से वृंदावन धाम को लुप्त करा देते हैं, प्रकट करा देते हैं, फिर लुप्त करा देते हैं, फिर प्रकट करा देते हैं, और किसी संतों के ही हाथ से उनका जीर्णोद्धार करा देते हैं। तो कितने स्थान लुप्त हो गए थे फिर दोबारा बनाए गए, जैसे चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थान भी लुप्त हो गया था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के अंतर्धान होने के बाद में गंगा नदी ऐसी फ्लड हो गई कि चैतन्य महाप्रभु का पूरा जन्मस्थान कवर कर दिया पानी के अंदर, 100 साल के बाद उनके अंतर्धान होने के बाद में कवर हो गया और 400 साल कवर रहा। फिर जब ठाकुर भक्तिविनोद आए तो पानी वापस आया और फिर वो जगह वापस प्रकट हो गई। फिर भक्तिविनोद ठाकुर ने उसका बहुत रिसर्च किया स्पिरिचुअली, और वो होता है ना आर्काइवल डिपार्टमेंट, क्या कहते हैं उसको, आर्कियोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, पुरातत्व विभाग, वो सब पुराने हेरिटेज को संभाल के रखते हैं। वहाँ पर भी रिसर्च किया कागज पत्रों को, यहाँ पर भी किया, साधु संतों से पूछा और फिर सब कुछ करके आखिर जगन्नाथ दास बाबा जी की सहायता से पुनः वो जन्मस्थान प्रस्थापित किया और वहाँ मंदिर भी बनाया, सबके पास एक एक रुपया लेके मंदिर बनाया। इसलिए आज हमारे लिए वो चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थान उपलब्ध है। उधर सची माता का कुंड भी बनाया उन्होंने, गौर कुंड कहते हैं उसको, जहाँ पर सची माता उनको नहलाती थी। तो संतों की कृपा से वृंदावन प्रकट होता है, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। फिजिकली भी वो स्थान लुप्त होते हैं तो पुनः प्रस्थापित संत करते हैं, और जो स्पिरिचुअली वो स्थान है लेकिन किसी को इम्पोर्टेंस नहीं पता चल रहा है उसका, वो भी साधु संत जो है उसको स्पिरिचुअली भी रिवाइव करते हैं। तो इस तरह से ये सब बातें कहाँ से निकली थी, क्योंकि गरुड़ गोविंद का विग्रह जो है वो वज्रनाम ने बनाया है। अभी इतना सब बताने के बाद बोलेंगे लीला तो बताई नहीं आपने, तो लीला उसकी ये है कि चट्टीकरा ये स्थान जो है ना वो भगवान का गौचारण का बहुत प्रिय स्थान है। वैसे भगवान ने सब जगह गौचारण स्थान किया लेकिन कुछ स्थान बहुत प्रिय है उनके, जैसे ग्वाल पोखरा, जैसे पावन सरोवर, वैसे चट्टीकरा, काम्य वन, ये सब बाल लीलाओं के स्थान है उनके। तो चट्टीकरा में एक बार भगवान गौचारण कर रहे थे और निश्चित रूप से गौचारण कर रहे थे क्योंकि चट्टीकरा ये स्थान नंदगांव से बहुत दूर है और वत्सपाल लीला मैंने कहा ना जहाँ पर विजिलेंस है वहीं तक होता था। तो बड़ी गायों को देने के बाद वो उसके परे जाने लगे और ये उसके परे की जगह है चट्टीकरा नंदगांव से, इसलिए बड़ी गायों को लेकर ही वहाँ पर आए थे। और लीला करते करते अचानक भगवान को क्या मूड आया, भगवान जाकर सीधे सीतामा के कंधे पर बैठ गए और सीतामा को बोले गरुड़ बन जा, तो सीतामा जी गरुड़ बन गए। मतलब गरुड़ का एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली गरुड़ बन गए, वो ट्रांसफॉर्म हो गए। और भगवान जब बैठे उनके ऊपर ना, अभी देखो गरुड़ पैदा हो गए, गरुड़ निर्माण हो गए, मतलब क्या, गरुड़ जी का ब्रज के लीला में कोई स्थान नहीं है। कोई लीला है क्या ब्रज की जब गरुड़ जी के आए उसके अंदर, सब द्वारका में और बाकी जगह पर भगवान का वाहन है। वो भगवान इतना सिंपल रहते हैं कि वो वाहन भी रखते नहीं है हाँ वृंदावन में, तो गरुड़ जी कहाँ से आएंगे। लेकिन भगवान को ऐसा लगा कि अरे गरुड़ जी की याद आई भगवान को, मेरे गरुड़ जी क्या बहुत दिन से मिला नहीं, उनको याद आ रही उनकी। तो गरुड़ जी को अपनी सेवा में लेने के लिए उन्होंने ये लीला की, सीतामा को गरुड़ बनाया। और जैसे ही गरुड़ जी आए तो ऐश्वर्य भाव आए ना, अभी गरुड़ जी समझो अभी ऑफिस का कोई आदमी आपके घर पे आएगा और आप ऐसे लंच ले रहे हो तो आप घर के भाव में हो, अपना बनियन में बैठे हो, खाना खा रहे हो। ऑफिस का कोई आए तो बोले क्या करेंगे, तुरंत जाके अंदर जाके कपड़े वपड़े पहन के ऑफिशियल मूड में आ जाएंगे, एकदम ऑफिस के भाव में भी आ जाएंगे और बाहर से भी ऑफिस के भाव में आ जाएंगे। उन्हें क्या काम है, साइन चाहिए था आपका, एक ट्रस्ट पेपर पर साइन चाहिए था, साइन करके चले जाएंगे, फिर अपना कपड़े उतार के बनियन पर खाना खाने लगेंगे। तो ब्रज में गौचारण कर रहे हैं, ब्रज भाव में माधुर्य भाव में कर रहे हैं। जैसे गरुड़ जी का प्रवेश हुआ तो एकदम ऐश्वर्य भाव हो गया, तो जिसके ऊपर वो बैठे गरुड़ जी के ऊपर, सीतामा के ऊपर, उस कृष्ण के 12 भुजाएं निर्माण हो गई। पूरे ब्रह्मांड में 12 भुजाओं का केवल एक ही विग्रह है, वो छठीकरा में है, बाकी सब जगह चार भुजा वाले हैं, दो भुजा वाले हैं, बहुत सारे भुजा वाले, 12 भुजा वाले नहीं है। तो 12 भुजा में शंख चक्र पद्म गदा भी है, तलवार भी है, ढाल भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कमल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे बाय हार्ट नहीं है, लेकिन मैंने उनके पूरे निर्माल्य शरीर का दर्शन किया है। 3:30 बजे हमको एक बार पुजारी ने बुलाया था, आप आइए आपके हाथ से अभिषेक कीजिए, तो हमने एक बाल्टी भर पंचामृत से उनका अभिषेक किया था, मसाज कर करके बहुत ज़ोरदार, 3:30 बजे सुबह, वो भी दिल भर के, कोई टाइम का लिमिट नहीं, ऐसा नहीं कि 45 मिनट में फिनिश करना है, एकदम इत्मीनान से अत्तर से रगड़ा उनको, तब सभी दर्शन किया उनके 12 भुजाओं का। और ऐसे ना ऐसे बैठे हैं वो, और नीचे पूरा गरुड़ जी हैं और उसका मुख जो है ना वो ऐसे सामने है उनके। और एक सुंदर बात उन्हें उनको उन्हें मुझे बताई कि आपने आपके आपके घर में एकदम नन्ना सा बालक किसके घर पे, अभी एकदम नन्ना जस्ट बॉर्न, ऐसे 2 महीने का, आपका बालक तो बड़ा है ना, हाँ, और नन्ना से बालक को आपने देखा होगा ना, वो जब सोता है ना तो ऐसे उसके ऐसे पैर हो जाते हैं, फोल्डेड लेग्स पूरे जमीन पर लग जाते हैं। आप लेट कर देखो, आपके फोल्ड करके लेग लगते हैं कि लगते नहीं लगते हैं। डेवलपमेंट होने के बाद में ऐसे आधे ही खड़े रहते हैं, ऐसे ऐसे आप करोगे ऐसे रहेंगे, लेकिन बालक के नीचे गिर जाते हैं। बालक के पैरों में ना पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप कभी भी ऐसे खड़े रहने का प्रयास करो, आप नहीं खड़े हो सकते, लेकिन बालक खड़ा रह सकता है ऐसे 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 पूरा एकदम 180 डिग्रीज का। तो कृष्ण के दोनों पैर जो है ना वो उस एंगल में है, ऐसे नहीं है। जब घोड़े पर बैठते हैं ना हम लोग, तो हमारे पैर ऐसे रहते हैं, है ना, या तो ऐसे हो सकते हैं, लेकिन पूरे ऐसे होते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं, डेवलपमेंट के हिसाब से नहीं हो सकते। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कृष्ण तभी भी बहुत छोटे बालक थे, इसलिए उनके पैर जो है वो ऐसे है गरुड़ जी के ऊपर। और जैसे ही ये गरुड़ जी के ऊपर बैठे और गरुड़ जी प्रकट हो गए, वे प्रकट हो गए, 12 भुजा प्रकट हो गई, तुरंत वहां पर जो राधा रानी थी वो लक्ष्मी बन गई ऐश्वर्य भाव में। तो आज भी गरुड़ गोविंद के बाजू में राधा रानी की मूर्ति नहीं, लक्ष्मी की मूर्ति है, क्योंकि कुछ समय के लिए वहां पर वैकुंठ का वातावरण निर्माण हो गया, ऐश्वर्य प्रकट हो गया कुछ समय के लिए। और उसी समय पर रुक्मिणी और सत्यभामा गरुड़ के पंख के नीचे भी प्रकट हो गई। आज भी आप जाएंगे मंदिर में उधर और पुजारी को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे तो पूरा वस्त्र हटाएंगे और आपको भगवान के दो चरण कमल दिखाएंगे, गरुड़ के दो पैर दिखाएंगे, उनके नीचे दो मूर्तियाँ भी दिखाएंगे। और ज़्यादा रिक्वेस्ट करेंगे तो बोलेंगे आप शाम को शयन में आ जाओ या तो सुबह मंगला में 3:30 को आ जाओ, पूरा दर्शन कराएंगे कंप्लीट। और गरुड़ जी का कुछ भी दिखता नहीं है, लेकिन ड्रेस में ऐसा एक छेद बना के रखते हैं और गरुड़ जी का मुंह वो दिखाई पड़ता है, और आपको नहीं बताएंगे समझ में नहीं आएगा आपको क्या है, बताना पड़ेगा ये जो बीच में है ना ये गरुड़ जी का मुख है। अच्छा, फिर कपड़े ऊपर करेंगे तो पता चलेगा कि सब गरुड़ के पैर पंख सब है, पंख ऐसे पूरे हैं और नीचे पैर है पूरे ऐसे ऐसे गरुड़ जी के। और फिर गरुड़ जी गरुड़ गोविंद के आनंद के लिए यहाँ पर गोविंद कुंड भी निर्माण हो गया, जहाँ पर भगवान ने बहुत समय तक गौचारण करके स्नान किया, जल क्रीड़ा किया, ग्वाल बालों के साथ मस्ती किया, गौओं को पानी पिलाया, गौओं को धोया, वहाँ पर बहुत सुंदर जगह है वो, लेकिन एकांत है आज भी, क्योंकि अधिकतर लोगों को पता नहीं उसके बारे में, जिनको गोस्वामियों से पहचान है फ्रेंड है वो पता है उसके बारे में। तो अभी एक लास्ट बात बताएंगे आपको वृंदावन के बारे में। वृंदावनस्य संयोगात पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च भक्ति देवी। हाँ, तो वृंदावन के संयोग में जब भी हम आते हैं तो भक्ति देवी पुनर्जागृत हो जाती है। कहती है भक्तु देवी जो शहर में कमजोर रहती है, तमोगुण रजोगुण के वातावरण में बहुत दुर्बल हो जाती है, वो वृंदावन के संपर्क में आते ही पुनर्तरुणी हो जाती है, पुनर्यवन हो जाती है, युवा अवस्था का अनुभव करती है। और भक्तिर नृत्यति यत्र च, यहाँ पर भक्ति देवी नृत्य करती है आनंद से। और भक्ति के दो बच्चे हैं, क्यों हैं? ज्ञान और वैराग्य। वो भी बुढ़े होकर एक बार गिर गए थे, कहते हैं गुजरात में ऐसे वर्णन आता है, नारद मुनि वहाँ पर आए थे और भक्ति देवी बहुत बुढ़ी हो गई थी और उसके दो गोद में दो ऐसे वृद्ध अवस्था में दो आदमी थे और वो कह रहे कि मेरे बच्चे हैं। तो नारद मुनि कहते हैं बच्चे कैसे है? तो बुढ़े हैं। बोले है बुढ़े लेकिन वो अकाल वृद्ध हो गए हैं और मैं भी कमजोर हो गई हूँ। तो नारद मुनि उनको लेकर वृंदावन आए। जब वृंदावन आते तो बुढ़े थे ना वो, तो जवान बच्चे बन गए, वो भी तरुणी हो गई और नृत्य करने लगे तीनों। ऐसा एक लाक्षणिक और अलंकारिक कथा है। तो भक्ति देवी वृंदावन के संग से संयोग से संपर्क से पुनरुज्जीवित हो जाती है, नृत्य करने लगती है। ऐसा ये धन्यम ते वृंदावनम, ऐसा ये वृंदावन धाम बहुत धन्य है। और एक बात बताता हूँ, आप लोगों को शायद पता होगा कि भगवान ने गिरिराज को उठाया है ना, तो वो श्रीनाथ जी कहलाए गए या गोपालनाथ जी कहलाए गए। वो अपना उनका एक विग्रह है जो गोवर्धनधारी के स्वभाव रूप में खड़े हैं है ना, तो वो गोवर्धनधारी का रूप जो है उसको श्रीनाथ जी कहते हैं। भगवान श्रीनाथ जी के रूप में क्यों प्रकट हुए? इसका रहस्य आचार्य बताते हैं कि भगवान की सखा लीला में तृप्ति नहीं हुई। सखा लीला बहुत की उन्होंने, बहुत आनंद लिया, लेकिन फिर भी इच्छा रही उनकी अपूर्ण, तो उसको पूर्ण करने के लिए वो श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट हो गए, और श्रीनाथ जी के रूप में उनके और एक 8 सखा जो है प्रकट हो गए, और वो सभी वल्लभाचार्य के 2 पुत्र हुए। वल्लभाचार्य का विवाह हुआ हमारे पंडरपुर के भगवान विट्ठल के आदेश से, उनका विवाह हुआ, उन्होंने आदेश दिया कि आपका संप्रदाय टिकना है तो आप विवाह करो, पंडरपुर में उनकी मुलाकात हुई भगवान विट्ठल से। चंद्रभागा पार करके चलकर पानी के ऊपर से भगवान विट्ठल जी उनको मिलने आए थे और उनको आदेश दिया, फिर उसके बाद अब तक सन्यासी थे मतलब ब्रह्मचारी थे, उसके बाद विवाह किया उन्होंने, तो 2 पुत्र हुए गोकुलनाथ जी और विट्ठलनाथ जी। उनको रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्रीनाथ जी की सेवा ड्यूटी वर्शिप सुपुर्द कर दी। अब इसमें भी बहुत विवाद है वृंदावन में, लेकिन छोड़ दीजिए उसको, हमारे शास्त्र में लिखा है रघुनाथ दास गोस्वामी के अंडर थे श्रीनाथ जी महाराज, और उन्होंने विट्ठलनाथ जी और गोकुलनाथ जी को योग्य समझकर उनके हाथ में सेवा दे दी, और ये दोनों साक्षात्कारी महात्मा थे, वो सदैव श्रीनाथ जी से बातें किया करते थे, उनके सामने कभी श्रीनाथ जी प्रत्यक्ष कभी मूर्तिमान, कभी प्रत्यक्ष कभी मूर्तिमान, और नित्य नियम से उनकी बातें होती थी श्रीनाथ जी से, कभी गुस्सा कभी आनंद कभी मजाक कभी कुछ, कभी रिपोर्ट कभी कुछ फीडबैक देते थे हमेशा। तो इन दोनों के 4 प्रधान शिष्य हुए, सबके मुझे नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन एक है सूरदास, सूर सागर कहते हैं उनको, उसके बाद एक है चितस्वामी, एक है नंददास जी, एक है प्रेमानंद दास, एक है गोविंद स्वामी जी, और कुंभन दास जी, चतुर्भुज दास जी, ये 6 हो गए ना, अभी 2 और बाकी है, चितस्वामी नंददास और 2 बाकी है। हाँ और कौन है बताइए, सूरदास कुमनदास चतुर्भुज दास, इसमें कुमनदास और चतुर्भुज दास पिता पुत्र हैं, कुमनदास के पुत्र चतुर्भुज दास हैं। तो ये जो 8 है उनको उनका नाम है अष्टछाप, तो अष्टछाप में एक है गोविंद स्वामी, और ये सब लोग सिद्ध थे, वो सब लोग के साथ श्रीनाथ जी मूर्ति से बाहर आकर खेलते थे, इनकी बहुत चटपटी लीलाएँ हैं, बहुत चटपटी मतलब जो हमने भागवत में भी नहीं पढ़ी है वैसे लीलाएं उन्होंने इनके साथ में की। तो उसमें से गोविंद स्वामी जो है, ये सब लोग कब कवि भी थे, और सबने जो भी कुछ किया भगवान के साथ प्रत्यक्ष किया उस पर सब पर कविता लिखी। सूरदास जी तो खेलने में असमर्थ थे क्योंकि वो अंधे थे, लेकिन भगवान को आकर मिलकर उनसे लीला करते थे, लेकिन सूरदास जी को अंधा होने के बाद भी सारा भगवान का दर्शन इत्थंभूत हुआ करता था। लोग उसको पूछते भी थे बताओ क्या श्रृंगार किया है, तो पूरा डिटेल में वर्णन करते थे। वो राधाकुंड में लीला हुई है, जगन्नाथ जी के मंदिर में एक बार वो आए थे, राधाकुंड में जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहाँ पर सूरदास जी एक बार आए थे, उनका मजाक करने के लिए उन्होंने कहा बताओ सूरदास जी हम पर्दा बंद करके रखे हैं, आप दर्शन करने के लिए आए हैं, क्यों दर्शन करने के, आपको दिखता क्या है? बोला मैं दर्शन करने नहीं आया, वो मुझे दर्शन करेंगे इसलिए मैं आया हूँ। दर्शन करने के 2 काम होते हैं, एक वो मुझे देखे और मैं उनको देखूँ, मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ ऐसा आपको लग रहा है ठीक है, लेकिन उनको तो मुझे देखने दो, नहीं हम पर्दा नहीं खोलेंगे, पहले आप वर्णन करो अंदर क्या श्रृंगार किया है। तो उन्होंने ये धड़ाधड़ वर्णन करना शुरू किया, तो वर्णन पूरा बोले लोगों को और बोला और बोलो और बोलो, तो उन्होंने गाली पकना शुरू किया, अरे नंग भड़ंग ये ऐसे वैसे, हाँ बूढ़े बाप को हुए बेटे ऐसा चालू किया उन्होंने। तो फिर बोले अरे और बोलेगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, पर्दा तुरंत खोल दिया उन्होंने। ऐसे लीला है वहाँ की सूरदास जी की। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब लोगों के साथ भगवान का प्रत्यक्ष संग था, और सूरदास जी का ऐसा भाग्य था कि सूरदास जी ने अपने अंधे होने पर भी अंतर चक्षु से अनंत लीलाओं का दर्शन किया, यहाँ तक कि मान मंदिर की जो लीला है भगवान जो मोर बनकर नाच रहे हैं वो भी सूरदास जी ने लिखा है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष दर्शन किया उनका। स्वामी हरिदास जी ने भी लिखा है वही वर्णन अपने दृष्टि से, अलग लीला मान मंदिर की लीला। ये सारे जिन्होंने जितने भजन लिखे हुए हैं वो उनके दृष्टांत है, कोई कपोल कल्पना और यमक क्या कहते हैं उसको, व्हाट इज दैट कॉल्ड, राइमिंग करके बनाया हुआ कविता नहीं है उनका, वो प्रत्यक्ष दर्शन की अनुभूतियाँ हैं सब। तो इसमें से गोविंद दास जी है वो अपने कविता में लिखते हैं, वाई शुड आई गो टू वैकुंठ, मैं वैकुंठ में क्यों जाऊँ, वहाँ पर ना बंशीवट है ना यमुना है ना गोवर्धन है, मोरों की आवाज़ नहीं है वहाँ पर, वहाँ पर मुरली की गुंजन नहीं है, वहाँ पर न रोमांच उपजत, वहाँ पर कभी रोमांच खड़े नहीं होते। वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते ही रोमांच खड़े हो जाते हैं, वहाँ पर ना नंद महाराज है ना यशोदा है, इसलिए आई डोंट वॉन्ट टू गो टू वैकुंठ। वैकुंठ नहीं जाना चाहता। ये ब्रजवासियों का भाव है, क्योंकि आज मैं अभी कुछ सोच के आया था लेकिन कुछ बताया नहीं, शाम को बताऊंगा शायद। मैं आज बंसी के बारे में बताने वाला था आपको कि वृंदावन के, जैसे मैंने कहा ना, गोवर्धन इंपॉर्टेंट है, यमुना इंपॉर्टेंट है, ब्रज रज इंपॉर्टेंट है, गाय इंपॉर्टेंट है, पेड़ इंपॉर्टेंट है, वैसे मुरली भी इंपॉर्टेंट है और मोर पंख भी इंपॉर्टेंट है। ये सब ब्रज के खास विशेष अंग है, इसके बिना ब्रज पूर्ण नहीं होता और ब्रज के बाहर ये चीज़ नहीं है। हम लोग ने महाभारत में देखा तो वहाँ पर भी कृष्ण हाथ में मुरली लेकर मोर पंख लेकर घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है महाभारत में। जब ब्रज छोड़ के गए ना तो मुरली और मोर पंख यहीं छोड़ के गए, वो वनमाला मुरली मोर पंख यहीं ब्रज में ही रहेगा, और वहाँ पर गए और फिर वहाँ की लीला शुरू किया उन्होंने। तेनी वेज अभी आज की कथा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, शाम को मिलेंगे फिर। हरि बोल। कोई प्रश्न है किसी का? यस, तो थोड़ा पानी दे दो। हाँ पानी, हाँ है पानी।
यस, तो जी आपने ये बताया था तीन स्तर, ब्रज ब्रजनाथ को तीन स्तर का बताया था कि कृष्ण ने उनको दिया था। पहला था
वन, सर और विग्रह।
सर का मतलब,
सर मतलब वाटर पॉन्ड, वाटर रिजर्वायर, वो बताना भूल गया। सर का मतलब सरोवर, अमृत सर मतलब अमृत का। हमारे यहाँ पर भी एक दही सर है, वहाँ पर भी दही का पॉन्ड था इसलिए दही सर नाम पड़ा है उसका। सर का मतलब पॉन्ड, जलाशय। तो हम ये बात बताना रह गए मेरी कि कुछ कुंड वहाँ पर पहले थे भगवान के समय पर निर्माण हुए, जैसे गोविंद कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड, लेकिन रत्न कुंड, मोती कुंड ऐसे स्थान जो है जो वज्रनाम ने बनाए, जहाँ पर राधा रानी ने कृष्ण के द्वारा घर के द्वारा मिले हुए मोतियों को उपजा और खेती की उसकी और रत्न उगलाए, मोती से डायमंड्स, तो वहाँ पर इन्होंने कुंड बनाया। जहाँ पर भगवान ने बरसाने से आए हुए मोतियों को बोया और मोती उपजे, मोती से मोती, तो मोती कुंड बना। तो मोती कुंड जो है वो बाद में बना, जो वज्रनाम ने बनाया। ऐसे बहुत सारे कुंड बाद में बने हुए हैं। मानसी गंगा भगवान के समय की बनी हुई है, कुसुम सरोवर भगवान के समय बना हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कुंड है जो बाद में वज्रनाम ने बनाए और ब्रज को संवारा। और जहाँ जहाँ विग्रह नहीं थे वहाँ पर बलदेव जी का विग्रह, गरुड़ गोविंद का विग्रह, मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपीनाथ जी के विग्रह बनाए। हाँ, फिर वो हरिदेव जो है ना, गोवर्धन में हरिदेव, वृंदाव मथुरा में केशव देव, वृंदावन में गोविंद देव, गोवर्धन में हरिदेव, और आगे कौन से देव हैं? एक आगे भी एक देव हैं, वो चार देव, चार देवियाँ, ये सब वज्रनाम ने बनाए हैं। और एडिशनल कुंड भी बनाए हैं, और जितने भी वन थे उनको संवारा है उन्होंने, सबको स्थान अच्छी तरह से संवार के रखा, आज सब नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? रावल जो है ना, रावल वो गोकुल में है, गोकुल जो यहाँ पर कृष्ण का जन्म हुआ था, नंद बाबा का घर था, उससे आगे कुछ 4-5 किलोमीटर है। राजा रानी का जन्म वहाँ पर हुआ था, वो भी माइग्रेट होते हैं, पहले रावल से साथ साथ चलते हैं और साथ साथ तंबू लगाते हैं, लेकिन वो बसोती में है, इनका छठीकरा में है, फिर वहाँ से निकलते हैं, फिर सफ़र करते 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 बरसाने बस जाते हैं और फिर ये नंदगांव बस जाते हैं। मतलब वृंदावन नहीं बसते हैं, लेकिन वृंदावन में एक लोकेशन इनका, एक लोकेशन उनका। ऐसे कहते हैं कि नंद बाबा और काम्यमन में भी निवास किया है, वहाँ पर भी 84 खंबा है, और वहाँ से भी लौट कर आए, उसका भी रिसर्च चल रहा है, कभी गए थे क्या किया था उधर। ठीक है, हरि बोल, थैंक यू।